हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अगली बार से तुम्हें जरूर बताकर जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं ठीक हूँ लेकिन तुम नहीं। आदित्य की इस बात पर सुनैना का मुंह बन गया और वो थोड़ा सा आगे आते हुए आदित्य के चेस्ट पर अपना सिर रखती हुई बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आदि। और इतना बोलते हुए उसने आदित्य की कमर और पीठ के इर्द गिर्द अपनी अपनी बाँह कस ली। उसके इस तरह नज़दीक आकर गले लगने पर आदित्य को भी काफ़ी सुकून महसूस हुआ और उसने भी सुनैना को अपने गले से लगा लिया। और फिर वो बोला, चलो अच्छा मेडिसिन लो अपनी, फिर तुम्हें रेस्ट करना है। मेडिसिन की बात सुनकर सुनैना का फिर से मुंह बन गया, लेकिन वो समझ रही है कि वो दवाइयों से अभी पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि आदित्य चाहता है वो जल्द से ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं सुनैना भी यही चाहती है, इसलिए वो चुपचाप आदित्य का हाथ पकड़कर वो उसके साथ आगे आई। वो बेड पर बैठी, आदित्य ने उसकी दवाई निकाली और फिर दवाई आगे बढ़ाते हुए उसे पानी का ग्लास भी थमा दिया। तो सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए वो दवाइयाँ खा ली और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या, मैंने मेडिसिन ले ली लेकिन मुझे अभी रेस्ट नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी बातें करनी है जो हमने साथ बैठकर इतने दिनों से नहीं की। और तुम्हें पता है आदित्य, तुमने मुझे जो कुछ भी बताया था, पता नहीं क्यों मुझे उनमें से कुछ बातें अब ऐसा लगता है याद नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी लाइफ और हाँ मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी। क्या ये सब मेरे चोट की वजह से हो रहा है? सुनैना ने भरी हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देखते हुए उसको ये बात बताई तो आदित्य ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ टेम्प्ररी है। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है तुम मेडिसिन लोगी टाइम पर, बिना गैप के, तो सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हें सब कुछ याद भी आ जाएगा और परमानेंट याद रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, अभी तुम्हें सब कुछ याद है। आदित्य की बात पर सुनैना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ और तुम्हें तो मैं नहीं भूल सकती ना कभी भी। तुम्हें पता है आदित्य, तुम अब मेरी लाइफ बन चुके हो, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती और तुम कभी भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। इतना पूछते हुए सुनैना ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ ही देखने लगी। तो आदित्य ने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में ले लिया और दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है सुनैना, मैंने ना कभी भी छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा था और तुमसे शादी भी मैंने इसीलिए की थी जिससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रह सकूं। और तब से अब तक कितना कुछ बदल गया है ना। पहले सिर्फ मैं ही तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो, तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ सेकंड बाद सुनैना ने उससे थोड़ा दूर होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ ही बहुत प्यार से देखने लगी। आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए सुनैना की नज़र उसके होठों पर आकर टिक गई और वो एकटक उसकी तरफ ही देख रही है बिना पलके झपकाए। तो उसके इस तरह देखने से आदित्य समझ गया कि वो जरूर उसे किस करना और उसके करीब आना चाहती है। आदित्य भी इतने दिनों से सुनैना से दूर है और उसकी हालत की वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी जब उसने सामने से सुनैना की मर्जी देखी तो वो भी खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ते हुए उसने सुनैना के होठों पर अपने होठ रख दिए और सुनैना के गुलाबी नाजुक लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुनैना भी जैसे कब से यही चाहती थी, इसलिए आदित्य के होठों की छुअन महसूस होते ही उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसका एक हाथ आदित्य की बाँह पर कस गया और दूसरा हाथ उसने उसकी गर्दन में डाल दिया। वो दोनों बहुत ही प्यार और शिद्दत से एक दूसरे के होठों को चूम रहे हैं और उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यासे को कितने दिनों के बाद आज पानी मिला हो और वो दोनों एक दूसरे के होठों से अपनी प्यास बुझा लेना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए आदित्य ने सुनैना के कंधे पर हाथ रखा और उसे वही बेड पर लिटा दिया, लेकिन अभी भी वो उसके होठों से दूर नहीं हुआ है और उसे किस कर रहा है। तभी सुनैना की सांसें थोड़ी भारी होने लगी और आदित्य को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ उसने तुरंत ही सुनैना के लबों को आज़ाद कर दिया और फिर उसके चेहरे पर किस करता हुआ उसकी गर्दन पर आ गया। और उसको लिटाने के बाद वो भी अब उसके ऊपर ही है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि इन सब की वजह से सुनैना की ओवरऑल मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए गर्दन पर किस करते हुए वो एकदम से रुक गया और वहीं सुनैना की चेस्ट पर अपना सिर रखे हुए लेट गया। आदित्य के लिप्स का टच अपने बदन पर जैसे ही सुनैना को महसूस होना हुए वैसे ही उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और आदित्य को अपने ऊपर से रखकर लेटा हुआ पाया तो उसने भी अपने हाथ उसके ऊपर करते हुए उसे अपने और करीब कश कर लिया और हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ आदि, तुम रुक क्यों गए? आदित्य के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सुनैना के सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता जिससे कि सुनैना इस बारे में सोचे या फिर उसकी चोट पर कोई असर पड़े, इसीलिए हल्का सा मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुम रेस्ट करो, तुम्हें नींद आ रही होगी ना दवाई की वजह से, बस इसलिए। इस पर सुनैना ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मुझे इतनी भी नींद नहीं आ रही और मैं अभी। और वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आदित्य ने फिर से उसके होठों पर हल्के से किस कर लिया जिससे कि सुनैना आगे बोल नहीं पाई और अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए नोटिस करके आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट एंड स्लीप वेल। और मैं तो यही हूं ना तुम्हारे पास। और इतना बोलते हुए वो सुनैना के ऊपर से हटकर उसके साइड में लेट गया, लेकिन उसने सुनैना को अपने एकदम करीब कर लिया और फिर उसकी गर्दन में अपना सिर छिपाते हुए एक बार फिर से उसके कानों के पीछे किस किया, जिससे कि सुनैना को बहुत ही अच्छा फील हुआ। लेकिन उसे पता है अभी आदित्य इससे आगे नहीं बढ़ने वाला, इसलिए सुनैना ने भी उसे फोर्स नहीं किया और बस उसका हाथ अपने पेट पर रखवाकर उसका हाथ पकड़े हुए उसने आंखें बंद कर ली। आदित्य काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए सुनैना की आगोश में वो बहुत ही जल्दी सो गया। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना का मन बहुत ही ज्यादा बेचैन था, शायद इसीलिए अपनी बेचैनी कम करने के लिए वो इस वक्त आदित्य का साथ चाहती थी और इसीलिए उसने उसे किस करना भी शुरू किया था। लेकिन आदित्य ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और सुनैना भी उसे फोर्स नहीं कर पाई, क्योंकि इस वक्त वो खुद ही अपनी सिचुएशन समझ नहीं पा रही है, लेकिन बेचैनी की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही है। वो अपनी आंखें खोले हुए वहां बेड पर लेटी हुई कमरे की छत को देख रही है और काफी कुछ सोच रही है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और शायद इसी वजह से वो चाहती थी कि आदित्य उसे प्यार करे, जैसे कि उसका ध्यान भटके, लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं किया। तो अब ये सब सोचते सोचते उसके सिर में भी दर्द होने लगा, क्योंकि काफी चीजें उसे याद नहीं आ रही हैं।
उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग से वो सब निकलता जा रहा है जिन चीजों को याद रखना भी चाहती है, और ऐसा सब उसकी चोट की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे अभी इस बारे में नहीं पता। तो वो बहुत अनईजी फील कर रही है और ये सब कुछ सोचते हुए उसे जैसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। तो उसने आदित्य का हाथ अपने पेट पर से हटाया और वहीं बेड पर उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आदित्य इस वक्त काफी ज्यादा गहरी नींद में था, तो उसे इस बारे में पता नहीं चला और सुनैना चाहती भी नहीं थी कि आदित्य की नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि आज वो इतने दिनों के बाद ऑफिस गया था। सुनैना समझ रही थी कि वो काम को लेकर और उसे लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है और सब कुछ अकेले ही झेल रहा है। इस वक्त वो सुनैना को किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं कर रहा है, जबकि पहले सुनैना भी उसके साथ मिलकर काम देखती थी और वो दोनों सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। लेकिन फिर ये सब इस बारे में सोचते हुए सुनैना ने आदित्य की तरफ देखा और आदित्य के हैंडसम परफेक्ट तराशे हुए चेहरे को निहारते हुए उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसकी बेचैनी जैसे थोड़ी कम हुई। उसने अपना हाथ आदित्य के चेहरे पर रखा और अपने मन में बोली, आई एम सॉरी आदि, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ कहना पड़ रहा है, बट क्या करूं, मैं ये सब भी मेरे बस में तो नहीं है। और फिर ये सिर दर्द, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुनैना ने आदित्य के गाल पर हाथ फेरा, जिससे कि आदित्य की पलकों में कुछ हलचल हुई और उसे लगा कहीं आदित्य नींद से न जाग जाए, इसलिए उसने तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया और फिर वो उससे थोड़ा दूर खिसकी और फिर बेड से उठकर खड़ी हो गई और अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर वो अलमारी खोलकर खड़ी हुई और उसमें पता नहीं क्या ढूंढने लगी, जो कि शायद थोड़ी देर के बाद उसे मिल ही गया। सुनैना के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है, रेड कलर का वेलवेट से बना हुआ, जो देखने में काफी एक्सपेंसिव और सुंदर लग रहा है। और उसे लेकर वो बेड के सामने पड़े काउच और टेबल के पास आई और वहां पर बैठकर उसे खोलने लगी। अगली सुबह चेहरे पर पड़ती हुई धूप और रोशनी की वजह से आदित्य नींद में ही हल्का सा कसमसाया और फिर लेटे हुए उसने एक हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए हल्के से रब करते हुए अपनी आंख खोली। लेकिन आंख खुलते ही उसने देखा कि वो वहां बेड पर अकेला था। खुद को अकेला पाकर आदित्य ने तुरंत ही इधर उधर भी देखा तो बेड के दोनों साइड पर उसके अलावा कोई भी और नहीं था, तो वो एकदम से ही हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और बोला, सोना। आदित्य को सुनैना की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कमरे में इधर उधर देखता उससे पहले ही उसे सामने काउच पर अपने हाथ में कुछ पकड़कर आधा लेटी हुई सी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में सो रही सुनैना आई, जो कि पूरी तरह से उस काउच पर ठीक से लेटी भी नहीं थी। तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा और अपने मन में बोला, ये वहां पर क्या कर रही है, क्या हुआ इसे, रात को तो हम साथ ही सोए थे यहाँ बेड पर। इस बारे में अपने मन में सोचता हुआ आदित्य बेड से उठा, उसने अपनी शर्ट और बाल हल्के से ठीक किए और सुनैना की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज़ पर पड़ी, जो कि उसे ठीक से नज़र नहीं आ रही कि क्या है।